بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا گن، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، سدیو کی بھانتی کارکرم کا آرمب ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں سے کر رہے ہیں۔ آج آپ سورہ دہر کی تیسری سے لے کر گیارہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں محمد صدیق منشاوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا،
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہم نے منوش کو مارگ دکھا دیا ہے، اب چاہے وہ کرتگ رہے یا اکرتگ، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نشچے ہی بھلے لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی بھلی مہک کا مشرن ہوگا۔ وہ ایک سروت ہوگا جس سے اللہ کے وشیش بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ ایشور کے یہ بندے منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا دنڈ ویاپک ہوگا، اور وہ کھانے کی چاہت و آوشکتا رکھنے کے باوجود اسے محتاج، اناتھ اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تو کیول اللہ کی پرسنتا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، انیتھا نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ آبھار۔ ہمیں تو اپنے پالنہار کی اور سے ایک ایسے دن کا بھے ہے جو اتیانت کرور اور لمبا ہوگا۔ تو ایشور نے انہیں اس دن کی کڑائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی و پرسنتا پردان کی۔
یہ تہران ہے اسلامی کانترانت ایران کی آواز۔ آج سوموار مہر کی 25، ربیع الاول کی 20 اور اکتوبر کی 17 تاریخ۔ شوتاو، ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا نوٹ کر لیں۔ آپ صدا کی بھانتی سب سے پہلے دیش ودیش کے سماچار سنیں گے، اس کے پشچات راج نیتک چرچا کا دینک کاریکرم ہوگا، اس کے پشچات آپ سنیں گے ساپتاہک کاریکرم وشو درپن، اور سبھا کا انتیم اور دوسرا ساپتاہک کاریکرم ہوگا سواستھ کا راز۔ شوتاؤ، یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا، اور اب آپ کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب آپ مریم مہدادی اور محمد مہدی سے سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھ سماچاروں کا سارانش۔ تہران نے کہا ہے کہ یورپی دیشوں کو ایران کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سیریا میں روسی حملے میں 100 آتنکوادی ڈھیر ہو گئے۔ ناٹو نے پرمانو سینیا ابھیاس آرم کر دیا۔ بیلاروس میں 9,000 روسی سینک سرکشا کے لیے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
ودیش منترالے کے پروکتا نے ایران میں ہونے والے حالیہ اپدرووں کے بارے میں یورپی دیشوں کے درشکوں کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ یورپی دیشوں کو ایران کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ودیش منترالے کے پروکتا ناصر کنانی نے آج سوموار کو اپنی ساپتاہک پریس کانفرنس میں پترکاروں کے سوالوں کا جواب دیا اور کہا، جو دیش ہمارے خلاف دعویٰ کرتے ہیں وہ سوئم مانواادھیکاروں کے ہنن کرتے ہیں۔ ودیش منترالے کے پروکتا نے ایران کے سندر میں فرانسیسی ادھیکاریوں کے دعووں کے بارے میں کہا، ہم نے پہلے ہی اچھے اور برے آتنکوادیوں کے وبھاجن کے سمبندھ میں یورپی و پشمی دیشوں کے ویوہار کو دیکھا، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپدرویوں کو بھی اچھے اور برے میں بانٹ رہے ہیں، اور اگر یہ اپدرو ایران میں ہوتا ہے تو اپدروی اچھے ہیں اور ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جاتا ہے، پرنتو یورپ کو اپدرویوں کے خلاف کاروائی کا ادھیکار حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف بات کرنے والے دیش دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے لائے انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف بات کرنے والے دیش دوسروں کو نصیحت کرنے کے لائق نہیں ہیں، اور جو دیش ایران پر حملے کا سمرتھن کرتے ہیں ان میں سے ادھکانش مانواادھیکار ہنن کے وبھن اپرادھ انجام دیے ہیں۔ کچھ دیش हैं जो आतंकवादी गुटों के मेजबान हैं और उन्होंने विभाजन विभिन्न अपराध अंजाम दिए हैं कि निश्चित रूप से ये कृत्य पूरी तरह पाखंडी है। हम मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाले देशों को बुद्ध से काम लेने की सिफारिश करते हैं कि वे खुद अपने गरीबान में झांकें और उसके बाद दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं। उन्होंने फिलिस्तीन समस्या की ओर संकेत किया और कहा कि ईरान का दृष्टिकोण साफ है कि फिलिस्तीन के मूल निवासियों में जनमत संग्रह कराया जाए ताकि समूचा फिलिस्तीनी राष्ट्र और फिलिस्तीनी गुट उस रेफरेंडम में शामिल हो सकें और ईरान ने फिलिस्तीन समस्या के समाधान में अपना दृष्टिकोण राष्ट्र संघ में पंजीकृत करा दिया है।
सिपाही पासदारा ने इंकलाब इस्लामी IRGC की थल सेना का सैन्य अभ्यास देश के पूर्वी अजरबैजान और अर्दबिल प्रांतों के उत्तर में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र अरस में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार ये भव्य सैन्य अभ्यास IRGC के मिशनों के कार्यान्वयन के अनुरूप वार्षिक रूप से किया जाता है जिसमें जमीनी सेना की युद्धक तैयारी में सुधार की समीक्षा की जाती है। IRGC की थल सेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने बताया कि पैराशूट हेलीपोर्न ऑपरेशन नाइट रेड ऑपरेशन हेलीकॉप्टरों का मुकाबला करने वाला ऑपरेशन लड़ाकू और आत्मघाती ड्रोन का संचालन अरस नदी पर पुल बनाने का ऑपरेशन संचार सड़कों और पहाड़ों पर कब्जा और नियंत्रण विनाशकारी कार्रवाइयां इन सैन्य अभ्यास के विभिन्न हिस्से हैं।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सीरिया में आतंकवादियों के ठिकानों पर रूसी वायुसेना की बमबारी से 100 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर दी है। मीडिया सूत्रों के रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में रूस के शांति केंद्र के उप प्रमुख मेजर जनरल ओलीग एलुरोफ ने सीरिया में आतंकवादियों के एक प्रशिक्षण केंद्र पर हमले की सूचना दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार रूसी युद्ध विमानों के हमलों में लगभग 100 आतंकवादी मारे गए। तुर्की के नियंत्रण वाले सीरिया के उत्तरी क्षेत्र एफरीन और एजाज में आतंकवादियों के बीच झड़पें जारी हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के इस अधिकारी ने कहा कि रूसी सेना ने आतंकियों से मुकाबला करने के मकसद से उत्तरी सीरिया के क्षेत्र खत्मा में आतंकियों के एक प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया। इस हमले में आतंकवादियों का कमांड सेंटर, हथियारों का भंडार, हेडक्वार्टर, गोले बारूद से भरी 15 गाड़ियां और मिसाइल लॉन्चर पैड पूरी तरह से तबाह हो गए।
नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने व्लादिमीर पुतिन की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दिए जाने के बाद इस ड्रिल को न करने के लिए आई सभी अपील खारिज कर दी थी। स्टोल्टेनबर्ग ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर हम यूक्रेन युद्ध के कारण लंबे समय से पूर्व नियोजित अभ्यास को नहीं करेंगे तो इससे गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि नाटो का मजबूत पूर्वापेक्षित व्यवहार हमारी सैन्य ताकत है, यही तनाव बढ़ने से रोकने का बेहतरीन तरीका है। 30 देशों के संगठन नाटो ने जोर देकर कहा कि ये एक नियमित और बार बार होने वाला अभ्यास है जो 30 अक्टूबर तक चलेगा। रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले ही इसकी योजना थी और मौजूदा हालात से इसका कोई संबंध नहीं है। नाटो के इस अभ्यास में अमेरिका के B-52 लॉन्ग रेंज के बॉम्ब और कुल 60 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। बेल्जियम, ब्रिटेन और उत्तरी सागर के आसमान में ये अभ्यास होगा।
बेलारूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 9,000 रूसी सैनिक देश की रक्षा के लिए तैनात किए जा रहे हैं। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्रीय समूह के हिस्से के रूप में 9,000 से कम रूसी सैनिकों को देश में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार बेलारूस ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए रूस के अतिरिक्त बलों की तैनाती का इशारा कर दिया है। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग विभाग के प्रमुख ने लिखा है कि रूसी सैनिकों की पहली टुकड़ी के साथ ट्रेनें बेलारूस में पहुंचना शुरू हो गई हैं और स्थानांतरण की इस प्रक्रिया में कई दिन का समय लगेगा।
यूक्रेन की राजधानी कीव में सोमवार को कई धमाके सुनाए दिए। प्राप्त समाचारों के अनुसार कीव में पिछले रूसी हमले के ठीक एक हफ्ते बाद ये हमले हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रिये यरमाक ने राजधानी के केंद्र में हुए कई धमाकों के बाद कहा कि रूस को लगता है कि इससे उसे मदद मिलेगी, लेकिन ये कोई उसकी बेचैनी दिखाता है। हमले से पहले रेड सायरन सुनाई दिए, जिसके बाद धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। कीव के मेयर विटाली क्लिटशेंको ने कहा कि इनमें से एक धमाका शहर के बीचों बीच शेवनचेकिम्स डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सभी सेवाएं मदद के लिए पहुंच रही हैं, आप शेल्टर में रहें।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। विश्व बैंक के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि रूस से युद्ध की वजह से यूक्रेन में महंगाई 10 गुना बढ़ गई है। विश्व बैंक के पूर्वी यूरोप के क्षेत्रीय देश निदेशक अनुरूप बनर्जी ने कहा कि ऊर्जा सुविधाओं पर इस सप्ताह के बड़े पैमाने पर रूसी हमलों के बाद यूक्रेन की बिजली की तेजी से बहाली युद्धकालीन प्रणाली की दक्षता को दर्शाती है, लेकिन रणनीति में रूस के बदलाव ने खतरे को बढ़ा दिया है। उन्होंने एक साक्षात्कार में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में ये बात कही। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय दाताओं से कहा था कि यूक्रेन अगले साल के अनुमानित बजट घाटे को पूरा करने के लिए लगभग 55 बिलियन की आवश्यकता है और स्कूलों, आवास और ऊर्जा सुविधाओं सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए अन्य 17 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है।
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोर होती स्थिति के संबंध में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को मजबूत बताते हुए उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बावजूद भारतीय रुपए में स्थिरता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में भारत में मुद्रास्फीति कम है और मौजूदा स्तर उससे निपटा जा सकता है।
पाकिस्तान में हुए उपचुनाव में इमरान खान की पार्टी को बड़ी जीत मिली है। इस जीत से ये संदेश जा रहा है कि पाकिस्तान की जनता इमरान खान को पसंद करती है। आने वाले चुनाव में इसका मनोवैज्ञानिक फायदा इमरान खान को मिलेगा। वहीं शहबाज सरकार के लिए ये परिणाम चिंता बढ़ाने वाले हैं।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना की कार्रवाई में 5 आतंकी मारे गए हैं। यह ऑपरेशन पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक विभाग और खुफिया एजेंसियों ने बलूचिस्तान के मुस्तुम जिले में अंजाम दिया। पुलिस ने दावा किया है कि ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार मारे गए आतंकवादी तीर्थयात्रियों पर हमले की योजना बना रहे थे। ऑपरेशन के दौरान 3 सुरक्षाकर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। इराक में ज़ायोनी शासन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने या नहीं बनाने का मुद्दा एक बार फिर गर्म है। पेश है एक रिपोर्ट, अहमद अब्बास की ज़बानी।
इराक में एक बार फिर फिलिस्तीन का मसला और इसराइल से संबंध स्थापित किए जाने का मुद्दा चर्चा में है और इराकियों का कहना है कि इसराइल से रिश्ते रखना रेड लाइन है, यानी इसकी हरगिज अनुमति नहीं दी जा सकती। इराक इस सिलसिले में काफी पहले से सक्रिय और बेदार है।
صوت مجلس النواب على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني।
इराक की जनता हमेशा से इस बात पर जोर देती आई है कि फिलिस्तीन पर अवैध कब्जा करने वाले ज़ायोनी शासन के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखा जाना चाहिए। गत 26 मई 2022 को इराक की संसद ने कानून पास किया जिसमें कहा गया कि इसराइल से रिश्ते रखना गैर कानूनी। اس سمے عراق کے سنسد سبھاپتی الحلبوسی نے کہا کہ عراقی سنسد نے ساتھ سے قدم اٹھاتے ہوئے یہ قانون پاس کیا اور یہ بتا دیا کہ عراق کی جنتا کیا چاہتی ہے اور فلسطین کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے۔ اس قانون کے انوسار اسرائیل سے رشتے رکھنے کی ہر کوشش کو اپرادھ مانا جائے گا اور اس پر سزا کا پراودھان ہے۔
القضیہ الفلسطینیہ من القضایا المهمہ۔
عراق کے سنی دھرم گرو کا کہنا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اسرائیل سے رشتے استھاپت کرنا کیول فلسطینی جنتا کا اپمان نہیں بلکہ یہ دھارمک استھلوں کا اپمان ہے اور اسلامی جگت کے ساتھ غداری ہے۔ ہمارے اوپر دباؤ تو بہت ڈالا جا رہا ہے لیکن ہمیں ہرگز پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور اسرائیل سے رشتے ہرگز نہیں رکھنا ہے۔
الشعب العراقی علی قدر عالی من الوعی والمسئولیہ والقدرہ۔
عراقی سانسد کا کہنا تھا کہ عراق کی جنتا پوری طرح بیدار ہے۔ اس قانون سے ثابت ہوا کہ عراق کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ریزسٹنس فرنٹ کے شہیدوں کے خون کی برکت سے زائنی شاسن ہرگز اس علاقے میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ عراقی سنسد میں اس قانون کا پاس ہونا آسان نہیں تھا۔ عراق میں امریکہ کی ایمبیسی کو پوری دنیا میں امریکہ کی سب سے بڑی ایمبیسی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ اس دوتاواس نے عراق کے الگ الگ دھڑوں پر بہت دباؤ ڈالا کہ یہ قانون عراقی سنسد سے پاس نہ ہونے پائے۔ امریکہ نے عراق کا قبضہ کر کے جو کوشش کی اس میں ایک کوشش یہ تھی کہ اسرائیل سے عراق کے سمبند استھاپت ہو جائیں لیکن عراقیوں نے اس کی انومتی نہیں دی۔ عراقی جنتا کا کہنا ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کرایا جانا چاہیے اور فلسطینی سنگٹھنوں کو ایک جٹ کرنا چاہیے۔ بغداد سے آئی آر آئی بی کے لیے جلال خالدی کی رپورٹ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کارکرم راجنیتک چرچا۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت میں ہندوتوادی شکتیوں دوارہ مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جائزہ لے رہے ہیں اختر عباس۔
بھارت میں ایک وشیش سمودائے کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ یتھاوت جاری ہے جس پر اس دیش کے مسلم دھرم گروؤں کی کڑی پرتکریائیں سامنے آئی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے پرمکھ محمود اسد مدنی نے اتر پردیش کے ضلع سلطان پور کی حالیہ گھٹنا پر پرتکریا ویکت کرتے ہوئے سرکار سے مسلمانوں کے ورودھ ایک پکشیے کاروائی روکنے کی مانگ کی ہے۔ اتر پردیش کے سلطان پور ضلع کے بلدی رائے کھیتر کے ابراہیم پور علاقے میں پچھلے 10 اکتوبر کو درگا پرتیما وسرجن یاترا کے سمے ہوئی ہنسا کے معاملے میں 32 آروپیوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں نیائک حراست میں بھیج دیا گیا۔ بلدی رائے تھانہ کھیتر میں درگا پرتیما وسرجن شوبھا یاترا کے دوران دو سمودائے کے لوگ ڈی جے کو لے کر آپس میں بھیڑ گئے۔ بلدی رائے کے پولیس کھیتراधिकारी राजा राम चौधरी ने बताया कि इब्राहिमपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा जब एक मस्जिद के पास पहुंची तब अजान का समय होने पर एक समुदाय के लोगों ने डीजे की आवाज को कम करने की अपील की जिस पर दोनों समुदायों के बीच विवाद हो गया और पथराव शुरू हो गया। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 12 अक्टूबर को 5 लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया। उन्हें अवैध अतिक्रमण हटाने एवं नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस जारी हुआ है। इस मामले को लेकर उलमा के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से कहा कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है जो सही नहीं है। मामले में बल्दी राय थाने में भारतीय दंड संहिता IPC की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है
جن میں دنگا، دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا، ہتیا کا پریاس اور سارجنک سمپتی ادھینیم 1984 کی کچھ دھارائیں شامل ہیں۔ یہ ایف آر آئی 52 لوگوں کے خلاف درج کی گئی ہیں، اس میں صرف ایک اجیات ویکتی اور باقی سب مسلمان ہیں۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ جلوس کو روک دیا گیا تھا اور مسلمانوں نے لاٹھی اور اویدھ ہتھیاروں اور پتھروں کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کیا جو وسرجن سماروہ میں بھاگ لینے آئے تھے۔ نواسیوں نے آروپ لگایا کہ دنگے بوال کے بعد ان کے گھروں پر حملہ کیا گیا، اور ان میں سے کچھ نے دعویٰ کیا کہ جلوس میں شامل لوگوں نے ان پر حملہ کیا۔ اس بیچ نواسیوں نے ضلع ادھیکاری رویش گپتا کو ایک گیاپن سونپ کر استھتی کا سنگیان لینے کا آگرہ کیا ہے۔ نواسیوں کا دعویٰ ہے کہ ویڈیو میں اکت پولیس ادھیکاری کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے جو ایک وشیش سمودائے کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت میں جب سے کیندر میں بھاجپا کی سرکار بنی ہے تب سے ہی مسلمانوں کے خلاف ہنساؤں اور حملوں کی نئی لہر شروع ہو گئی ہے، اور ہنسا کی یہ لہر کسی ایک شہر یا کھیتر سے وشیش نہیں ہے۔ بات یہیں پر نہیں رکتی بلکہ بھارتی جنتا پارٹی کے سانسد اور ودھائک ایک وشیش سمودائے کے جن سنگھار اور بہشکار تک کی باتیں کرنے لگے ہیں، لیکن کیندر سرکار کی اور سے ان لوگوں سے سوال تک نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ان کٹر پنتھیوں کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے ہیں۔
انڈین نیشنل کانگریس کے ادھیکش پد کے لیے ہونے والے چناؤں کا بیورا دے رہے ہیں دلی سے شمشاد کاظمی۔
بھارت کے مکھیہ وپکشی دل کانگریس کے ادھیکش پد کے لیے آج متدان ہوا، جہاں کانگریس کے کل ملا کر 9,300 ڈیلیگیٹس نے بھاگ لیا۔ دلی استھت کانگریس مکھیالے میں جہاں میڈیا کا جماوڑا تھا، کانگریس کی انترم ادھیکش سونیا گاندھی اور پارٹی مہا سچیو پریانکا گاندھی نے اپنے متادھکار کا پریوگ کیا۔ کانگریس مکھیالے میں پورو پردھان منتری منموہن سنگھ سہیت کل 75 ڈیلیگیٹس نے ووٹنگ کی۔ کانگریس ادھیکش پد کے لیے ملک ارجن کھڑگے اور ششی تھرور کے بیچ سیدھا مقابلہ ہے۔ پورو کیندریہ منتری ایوم کانگریس کے ورشٹھ نیتا مکل واسنک نے کہا کہ یہ چناؤ پارٹی کے بھیتر لوکتنتر کا پریچائک ہے۔ آج کے اس متدان کے لیے پورے بھارت میں 36 متدان کیندروں میں 67 پولنگ بوتھ بنائے گئے تھے۔ پچھلے 24 ورشوں میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب ادھیکش پد کے چناؤ میں گاندھی پریوار کا کوئی سدسیہ پرتیاشی نہیں ہے۔ کانگریسی نیتاؤں کے نرنتر آہوان کے باوجود راہل گاندھی نے کانگریس ادھیکش پد دوبارہ سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا۔ پارٹی پروکتا پروفیسر گورو ولبھ نے کہا، 167 ورش پرانی کانگریس کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ پارٹی کے ادھیکش پد کے لیے پہلے بھی چناؤ ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی سرو سمتی سے ادھیکش بھی چنا جا چکا ہے۔ راشد الوی نے کہا کہ ادھیکش چاہے جو بھی چنا جائے، اسے آگامی چناؤں کے درشٹگت پارٹی کو اوپر لے جانے کے لیے گمبھیر دائتو سنبھالنا ہوگا۔ دلی پردیش کانگریس میں بھی 280 ڈیلیگیٹس نے ادھیکش پد کے چناؤ میں متدان کیا۔ یدپی ملک ارجن کھڑگے کا ادھیکش بننا لگ بھگ طے نظر آتا ہے، لیکن دلی کانگریس ادھیکش انیل چودھری نے کہا کہ ادھیکش پد کے دونوں امیدوار پارٹی کے وفادار نیتا ہیں اور ہار جیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ادھر بھارت جوڑو پیدل یاترا پر نکلے راہل گاندھی اور کچھ دوسرے ڈیلیگیٹس نے بھی کانگریس ادھیکش پد کے چناؤ کے لیے ووٹ ڈالے، جس کا وشیش روپ سے پربندھ کیا گیا تھا۔ کانگریس ادھیکش پد کے چناؤ کا پرینام 19 اکتوبر کو گھوشت کیا جائے گا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا سماپت ہوئی۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شوتو ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindiradio@wsiribir۔ تو شوتو اب پرستوت ہے ہمارا ساپتاہک کاریکرم وشو درپن۔
विश्व दर्पण। श्रोताओ, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे यूक्रेन पर रूस के हमले की। रूस ने गत 10 अक्टूबर को यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई इलाकों पर भीषण हमले कर दिए। बताया जाता है कि रूस ने कम से कम 83 मिसाइल फायर कर दिए, जिससे पूरा यूक्रेन दहल उठा। रूस के बड़े हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वे अफरा तफरी और घबराहट का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे हमारे एनर्जी सिस्टम को तबाह करना चाहते हैं। वे एकदम निराश हो चुके हैं। उनका दूसरा निशाना आम लोग हैं। उन्होंने जानबूझकर ये समय चुना और इन ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचे। पर हम यूक्रेनी हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं। जो बर्बाद हुआ है, हम उसे दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली आपूर्ति थोड़ी देर के लिए बाधित हो सकती है, पर हमारी जीत में कोई बाधा नहीं आने वाली है। इसी वजह से उन्होंने ऐसा हमला किया है। दुश्मन की कोशिश हमें डराने की है। वो चाहते हैं कि लोग भागने लगे, पर हम जंग के मैदान की ओर जाएंगे। इस हमले से ठीक पहले क्रीमिया पुल पर भीषण धमाका हुआ था, जिससे क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल को भारी नुकसान पहुंच गया था। इस हमले के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की इंटेलिजेंस को जिम्मेदार करार दिया था। सोमवार के हमलों से रूस ने दरअसल यूक्रेन को यह पैगाम देने की कोशिश की कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
कीव्स्की रेजिम своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, самыми одиозными группировками.
क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर भीषण हमला हो जाने के बाद से ही रूस ये कह रहा था कि वो इस तरह के हमलों को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। यूक्रेन के शहरों पर जब रूस ने बड़े हमले कर दिए, तो उसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी एक बयान जारी किया। पुतिन ने बेहद महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि इस कदम के बाद यूक्रेन की सरकार ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के साथ खड़ा कर लिया है। पुतिन का इशारा क्रीमिया पुल पर होने वाले हमले की तरफ था। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे अपराधों पर प्रतिक्रिया नहीं हो, ये तो संभव नहीं है। रक्षा मंत्रालय की सलाह और सेना की योजना के अनुसार सटीक निशाने वाले लॉन्ग रेंज हथियारों से सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये हमले हवा, समुद्र और जमीन से किए गए
हैं। По объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
बताया जाता है कि पुल पर विस्फोटकों से भरे ट्रक पर ड्रोन से मिसाइल फायर किया गया था, जिसके नतीजे में बहुत भीषण धमाका हो गया था और पुल को काफी नुकसान पहुंचा था। नुकसान इतना ज्यादा हुआ था कि इसकी मरम्मत में 2 महीने का समय लग सकता है। रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल नाम का एक रूसी थिंक टैंक है, जिसके प्रमुख आंद्रे कोर्चुनोव हैं। उन्हें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के करीब माना जाता है और उनकी विदेश यात्राओं में वे साथ होते हैं। कोर्चुनोव का कहना है कि क्रीमिया पुल को निशाना बनाकर यूक्रेन ने बहुत भयानक गलती की और युद्ध के उसूलों को तोड़ा।
Well, I think that President Putin believed that there were some implicit rules of the engagement. And apparently some of the recent actions by the Ukrainian side were considered as a breach of these rules of engagement. That includes, for instance, the incident with the Crimean bridge, but the earlier murder of Daria Dugina and attacks on neighboring Russian regions. I think that the perception is that the Ukrainian side goes too far, and escalates, and it should get a lesson, if you wish.
Vish Darpan. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
यूक्रेन के रक्षा मंत्री के सलाहकार यूरीव साक ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि जिस ट्रक से धमाका हुआ वो रूसी था, उसकी नंबर प्लेट रूसी थी, उसका ड्राइवर रूसी था। यानी एक तरह से उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि इस धमाके से यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं था। इवाना क्लिमनश यूक्रेन के अधिकारी हैं और रूस के इस हमले से बहुत आहत और नाराज हैं।
रशिया इज जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड टेरर एंड फियर across Ukraine, and I'm sure that they are trying to reach that level of fear that maybe Ukrainian society would say, oh, we had enough, we just want peace at any cost. But that's not what they are reaching. The resolve of the Ukrainian nation is just getting stronger because we are outraged, we are not satisfied with how this is going, and definitely will push even stronger back on this aggressor and terrorist state of Russian Federation.
The Economist magazine के रूसी मामलों के editor आर्कादी ओस्ट्रोस्की रूसी राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप लगाते हैं।
He has a reputation as being completely ruthless, brutal butcher who will follow any order that he is given. In that sense, he is quite reliable for Putin. He is not somebody who is going to turn back and saying, "No, I'm not going to carry out this order."
सच्चाई यह है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों विशेष रूप से अमेरिका की भयानक साजिश के चक्कर में पड़कर भयानक दलदल में फंस गया। यूक्रेन का 18% से अधिक भाग रूस का हिस्सा बन चुका है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि वो अपने सारे इलाके रूस के कब्जे से आजाद करवाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको इस पूरे प्रकरण में यूक्रेन से काफी नाराज हैं। उनका साफ शब्दों में कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नेटो के हाथ का खिलौना बनकर पूरे यूक्रेन को नरक में झोंक रहे हैं। यही नहीं, पूरे इलाके के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। लुकाशेंको का मानना है कि यूक्रेन ने क्रीमिया पुल को निशाना बनाकर बहुत बड़ी गलती की। यूक्रेन की जंग के प्रभाव केवल इसी इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर विश्व स्तर पर देखा जा रहा है। हमले के बाद लोगों को बड़ी परेशानी हो गई है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में दूसरे देशों के लोग पढ़ाई के उद्देश्य से रहते हैं। पाकिस्तानी छात्रा आमिना हैदर ने अपने देश की सरकार से अपील की कि उनके लिए इंतजाम किया जाए। उनका कहना है कि भारतीय दूतावास सक्रिय है और वो भारतीय छात्रों को और भारतीय लोगों को बाहर निकाल रहा है।
यहाँ पर काफी ये बॉम्बिंग हो रही है और ये सब चीजों की वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई हमारे लिए हेल्प भेज दे, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि अपना इंडियन एम्बेसी जो है अपना हंगरी से जो है बॉर्डर्स खुलवा रही है ताकि जो बच्चे इंडियन यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो अपना जो है हंगरी के थ्रू इंडिया चले जाएं। तो हमारे लिए भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी अगर हो, हम लोगों को बस बोल दिया कि एक और सिटी है टर्नोपिल, हमें बस पाकिस्तान एम्बेसी ने बोल दिया कि आप वहां चले जाओ, और वहां जाने के लिए हमारे लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। हम लोग अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे दूसरी सिटी मूव कर लें? तो पाकिस्तान एम्बेसी ने बस ये बोल दिया कि टर्नोपिल आ जाओ, हम वहां से कर देंगे। और अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, अपना पाकिस्तानी कम्युनिटी अच्छी खासी है अपना बहुत बच्चे हैं, मतलब मैं अगर काउंट भी नहीं कभी कर सकती, मतलब अच्छे खासे बच्चे हैं यहाँ पर, हर अच्छा। हर सिटी में बल्कि यूक्रेन की, मतलब बेसिकली यहाँ पर अभी सब लोग अपने जैसे सारे फ्रेंड्स साथ में मिलके एक जगह पर रुक रहे हैं, जैसे मैं भी अब अपने फ्रेंड्स के साथ एक अपार्टमेंट में रुकी हुई हूँ उनके, तो हर कोई मतलब इस तरह ही रुक रहा है। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोगों को यहाँ से निकालने का कोई इंतजाम किया जाए, क्योंकि हम लोग जैसे देख रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी अभी इतनी एक्टिव हुई भी है, ऑलमोस्ट पोलैंड से, हंगरी से, जो भी यूक्रेन के आसपास में जितनी भी कंट्रीज हैं, वो अपनी अपनी फोन नंबर्स दे रहे हैं इंडियन बच्चों को कॉन्टैक्ट करने के लिए, और पूरा इंतजाम है इंडियन बच्चों को वहां से निकालने का। तो हमें भी प्लीज कोई इस तरह के फोन नंबर्स दें जहाँ पे हम रीच आउट कर सकें, और हमारे लिए भी कोई प्रॉपर एक ताकि हमारे लिए बॉर्डर्स खुले दूसरी कंट्रीज के लिए।
यूक्रेन जंग शुरू होते ही विश्व में खाद्यान्न की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका से बहुत सारे देश परेशान हो गए। वहीं दूसरी ओर पूरे यूरोप में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया। जैसे जैसे सर्दी का मौसम नजदीक आ रहा है, यूरोपीय देशों में चिंताएं गहराती जा रही हैं, क्योंकि रूस से गैस की सप्लाई बंद हो गई है। इस तरह देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध के बड़े भयानक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, और ये सब कुछ उस जुए का नतीजा है जो अमरीका खेलना चाहता है। अमरीका दरअसल वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। वाशिंगटन की कोशिश है कि रूस बोरिस यल्सिन के जमाने वाली स्थिति में लौट जाए और विश्व मंच या इलाके के स्तर पर प्रभावी खिलाड़ी की भूमिका में न रहे। अमरीका को इसके लिए एक अच्छा रास्ता ये नजर आ रहा है कि रूस को यूक्रेन की जंग में इस तरह उलझा दिया जाए कि वो सामरिक और आर्थिक दोनों आयामों से कमजोर हो जाए। मगर टीकाकार कहते हैं कि हालात उस रुख पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं जिस रुख पर अमरीका आगे ले जाना चाहता है, और इसका नुकसान केवल अमरीका को नहीं बल्कि उन सारे देशों को पहुंच रहा है जो अमरीका के इस खेल में शामिल हुए हैं, बल्कि नुकसान वे देश भी उठा रहे हैं जिनका इस खेल से कोई लेना देना नहीं है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है हमारी सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य का राज। सेहत का राज।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत का राज के कन्नकड़ के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और सैयद निसम का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति जरिश्क के बारे में चर्चा करेंगे।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रमों में हमने आपको बहुत से फलों की विशेषताओं के बारे में बताया था। इसी के साथ हमने उनकी औपचारिक विशेषताओं से भी अवगत करवाया था। फलों की ही भांति वनस्पतियां भी हैं जो अपने विशेष लाभों के साथ ही औपचारिक विशेषताओं की स्वामी होती हैं।
आज के कार्यक्रम में हम आपको एक बहुत ही प्रभावशाली और मशहूर वनस्पति से अवगत करवाने जा रहे हैं जिसे फारसी में जरिश्क कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम बेरबेरिस वल्गरिस है। ईरान में इसका प्रयोग खानों में किया जाता है। बेरबेरिस की बहुत सी औपचारिक विशेषताएं हैं। होम्योपैथी में बेरबेरिस वल्गरिस को एक विशेष महत्व प्राप्त है। इसका प्रयोग हर्बल दवाओं में भी किया जाता है। बेरबेरिस वनस्पति का पौधा 1 से 5 मीटर तक का होता है। इसके पौधे को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। ये वनस्पति उन क्षेत्रों में भी उग सकती है जहाँ के पानी में थोड़ी मात्रा में नमक पाया जाता है। इसका पौधा कांटेदार होता है। इसकी बढ़त में अधिक धूप की जरूरत होती है। ज़रेश्किया बर्बेरिस का फल बहुत छोटा होता है, जिसका स्वाद खट्टा और मीठा होता है। ये फल अंडाकार होता है, जो गुच्छों में पाया जाता है। ये गुच्छेदार फल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, किंतु खट्टे होने के कारण बहुत से लोग इसे खा नहीं पाते, जबकि कुछ लोग इसको बहुत ही चाव से खाते हैं।
इसके पत्ते कटावदार होते हैं, इसकी शाखाओं में कांटे पाए जाते हैं। वसंत का अंत और गर्मियों की शुरुआत में ज़िरिश के फूल आते हैं। ज़िरिश के फल गुच्छों में ही आते हैं। इस छोटे से फल या वनस्पति की एक विशेषता यह है कि इसका फल, इसके पत्ते और इसकी छाल आदि सभी मानव प्रयोग में आते हैं, जिनके भीतर उपचारिक विशेषताएं होती हैं। वैसे तो ज़िरिश कुछ विशेष क्षेत्रों में पैदा होती है, लेकिन वर्तमान समय में ये विश्व के हर क्षेत्र में पाई जाती है।
ईरान में पाई जाने वाली बर्बेरिस या ज़रेश गुणवत्ता के हिसाब से सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर कई प्रकार के ज़रेश होती है। ईरान में अधिकतर ज़रेश की पैदावार दक्षिणी खुरासान के कोहिस्तान में होती है। इसके अतिरिक्त ज़ीरको और कायनात में भी ये वनस्पति पैदा होती है। ईरान में पैदा होने वाले ज़रेश आरंभ में पीले रंग की होती है, लेकिन जब वो पक जाती है तो उसका रंग लाल होता है। देखने में ये छोटी किशमिश की तरह होती है।
दुनिया में सबसे अधिक ज़िरिश्क ईरान में पैदा होती है। पूरी दुनिया में जितनी भी ज़िरिश्क पैदा होती है, उसका 90% भाग ईरान में होता है। ईरान से ज़िरिश्क का निर्यात तुर्की, कजाकिस्तान, जर्मनी, रूस, फ्रांस, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब इमारात को किया जाता है। अपने अधिक पोषक मूल्यों और सरलता से प्रयोग के कारण ज़िरिश्क ऐसी वनस्पति है जिसका प्रयोग अधिक किया जाता है। यह ऐसी वनस्पति है जिसकी लगभग 500 जातियां पाई जाती हैं।
ईरान में लाल रंग और काले रंग वाले ज़िरिश्क प्रयोग की जाती है। ताज़ा ज़िरिश्क का रंग लाल होता है। वो ज़िरिश्क जिसका रंग काला होता है, वो ताज़ा नहीं होती। ऐसे में इसको खरीदते समय ध्यान देना चाहिए। अगर ज़िरिश्क का रंग काला है तो समझ लीजिए कि इसकी उचित ढंग से देखभाल नहीं की गई है, इसलिए इसमें वो लाभ नहीं होंगे जो लाल रंग वाले ज़िरिश्क में होते हैं। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि काले रंग वाले ज़िरिश्क की उपचारिक विशेषताएं बढ़ जाती हैं और जूस निकालने के लिए ये अधिक उपयुक्त है।
काली ज़िरिश्क का वैज्ञानिक नाम बर्बेरिस इंटेग्रिमा है। इसकी पहचान लगभग 650 वर्ष पूर्व की गई थी। बाद में इसका प्रयोग अधिकतर उपचार में ही किया जाने लगा। बर्बेरिस या ज़िरिश्क वास्तव में ऑक्सीकाइनाथाइन और बर्बेमाइन का मिश्रण है। ये इन पदार्थों से समृद्ध होती है। इन दो पदार्थों के अतिरिक्त ज़िरिश्क में किसी सीमा तक मॉलिक एसिड, टार्टरिक एसिड और कुछ मात्रा में पैक्टिन होता है। बताए गए पदार्थों के अतिरिक्त ये एंथोसाइनिन से भी समृद्ध होती है। बताते हैं कि होम्योपैथिक उपचार शैली में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ज़िरिश्क नामक वनस्पति विटामिन बी और सी से समृद्ध होने के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट की भी स्वामी होती है। इसकी एक विशेषता यह है कि बीमारियों के मुकाबले में ये ढाल के रूप में रहती है। वो तत्व जिसने इस छोटे से फल को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, वो इसमें पाया जाने वाला पदार्थ बर्बेरिन है।
दोस्तों, गहन अध्ययनों और जानवरों पर किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि इसके भीतर ब्लड प्रेशर को कम करने की विशेषता भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये शरीर के रोग प्रतिरोध सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ये संक्रमण को दूर करने और पुरानी बीमारियों को समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध रही है। अध्ययन से ये भी मालूम होता है कि जरिश्क में पाया जाने वाला बेरबेरिन शुगर रोगियों के भीतर इंसुलिन की संवेदनशीलता को सही रखता है और इस प्रकार से वो मधुमेह के रोगी के खून की शुगर को घटाने का काम करता है।
जरिश्क में विटामिन बी ग्रुप के कई विटामिन पाए जाते हैं जैसे B1, B2 आदि। इन विटामिन के भीतर बहुत से औपचारिक गुण पाए जाते हैं। विटामिन B1 की विशेषता यह है कि यह नर्वस सिस्टम की समस्याओं और मानसिक विकार को ठीक रखता है। यही विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों के मुकाबले में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की सहायता करता है। बेरबेरिन और विटामिन सी के अतिरिक्त जिरिश में थॉमसिन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, जैंथिन, क्रोमियम और कोबाल्टा भी पाया जाता है।
इन विशेषताओं के अतिरिक्त जरिश के भीतर जस्ता, मैंगनीज और तांबा भी होता है। यही सभी ऐसे दुर्लभ खनिज हैं जो बीमारी की रोकथाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेरबेरिन या जरिश की एक अन्य विशेषता यह है कि वो शरीर में लौह के जज्ब होने में सहायक होता है। लौह ऐसा खनिज है जिसकी आवश्यकता मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने में पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कारकों के कारण शरीर के भीतर लौह के जज्ब होने में बाधाएं आने लगती हैं और वो अच्छी तरह से शरीर में नहीं पहुंचता।
विटामिन के भीतर विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिसके प्रयोग की मात्रा को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाने से लोहे को अवशोषित करने में मदद मिलती है। हृदय प्रणाली और तंत्रिकाओं पर जिरिश्क के जूस का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। ये दिल के अतिरिक्त शरीर की पूरी व्यवस्था को सुचारू रखता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जरिश्क में उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इस प्रकार से ये वनस्पति कैंसर को रोकने में भी प्रभावी रहती है।
जिरिश का एक अन्य महत्वपूर्ण काम लीवर और पित्ताशय की थैली को साफ रखना है। हमारा लीवर खून को डिटॉक्सिफाई करता है, वसा को पचाने के लिए आवश्यक पित्त का उत्पादन करता है। यह हार्मोन को तोड़कर शरीर के लिए आवश्यक विटामिन, खनिज और आयरन का भंडारण करता है। यह पित्त के स्राव में सुधार करता है। यही कारण है कि जरिश को जिगर तथा पित्ताशय की थैली के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल अर्थात LDL को भी कम करता है।
जिरिश के जूस के भीतर अद्भुत प्रकार के जीवाणुरोधी और एंटी फंगस गुण होते हैं। यही कारण है कि इसके जूस के पीने से पेट सही काम करता है और हाजमे से संबंधित बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर पाचन तंत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई संक्रमण मौजूद है तो जिरिश के प्रयोग से इस मुश्किल से बचा जा सकता है। वे लोग जो पेट के अल्सर या डायरिया से पीड़ित हैं उनके लिए जिरिश के जूस का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। ये रस भोजन को पचाने में भी मदद करता है।
इसका प्रयोग त्वचा के लिए भी बहुत लाभदायक है। विटामिन बी परिवार के विटामिन्स के कारण ये त्वचा को साफ और सुंदर रखता है। इसके प्रयोग से मनुष्य की त्वचा कोमल रहती है। बालों के लिए भी जिरिश को लाभदायक बताया गया है। इसमें कार्बनिक कीटाणुनाशक प्रभाव होते हैं, इसलिए ये पेट के हजम की प्रणाली को सही रखती है। कुछ पारंपरिक चिकित्सकों का ये भी कहना है कि जरिश के जूस से आप अपने मसूड़ों को भी मजबूत रख सकते हैं। विशेष बात यह है कि मसूड़ों पर जरिश के जूस का प्रयोग करने के कुछ ही समय के बाद इसके चमत्कारिक प्रभाव को देखा जा सकता है। हृदय के ऊतकों को होने वाले नुकसान से यह वनस्पति बचाए रखती है। दिल के दौरों को रोकने में भी जरिश की भूमिका उल्लेखनीय है।
लीवर का मुख्य काम होता है शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना। जिगर को स्वस्थ रखने में जरिश की भूमिका बहुत अधिक बताई जाती है। ये लीवर को साफ रखते हुए इसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। शरीर के इस महत्वपूर्ण अंग को संक्रमित होने से भी जरिश बचाती है। फैटी लीवर के उपचार में इसके प्रयोग को सराहनीय बताया गया है। जिरिश के रस या इसके जूस को एक सीमित मात्रा में लगातार पीने से लीवर सुचारू रूप में काम करने लगता है। زرش کو وٹامن سی سے سمرد بتایا گیا ہے۔ شریر کی توچا کو نیروگی بنائے رکھنے میں بھی اس کا پریوگ لابھکاری سدھ ہوتا ہے۔ اس کے پریوگ سے توچا پر پڑنے والے کیل مہاسے سماپت ہو جاتے ہیں۔
دوستو، ایران میں زرش کو کئی پرکار سے پریوگ کیا جاتا ہے۔ اس کو یہاں پر کھانے میں بھی پریوگ کیا جاتا ہے۔ ایران میں ایک ونجن ہے جو زرش سے ہی بنتا ہے۔ یہ ایک پرکار کا پلاؤ ہے جس کو زرشک پلاؤ کہا جاتا ہے۔ ایران میں اس کھانے کو بہت ادھک پسند کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے کاریکرموں اور شادیوں میں بھی اس کھانے کو پروسا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہم آشا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پریاس آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کاریکرم کا سمے سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔ شوتاؤ، ابھی آپ سن رہے تھے ساپتاہک کاریکرم صحت کا راز، اور اب سمے مکھیہ سماچاروں کے سارانش کا۔ ودیش منترالے کے پروکتا نے ایران میں ہونے والے حالیہ اپدرووں کے بارے میں یوروپیہ دیشوں کے درشکوں کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ یوروپیہ دیشوں کو ایران کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سپاہی پاسداروں نے انقلاب اسلامی آئی آر جی سی کی تھل سینا کا سینیہ ابھیاس دیش کے پوروی آذربائیجان اور اردبیل پرانتوں کے اتر میں استھت سارجنک چھیتر ارس میں آرمبھ ہو گیا ہے۔ روس کے رکشا منترالے نے سیریا میں آتنکوادیوں کے ٹھکانے پر روسی وایو سینا کی بمباری سے 100 آتنکوادیوں کے مارے جانے کی خبر دی ہے۔ ناٹو کے سیکرٹری جنرل نے ولادیمیر پوتین کی طرف سے پرمانو حملے کی دھمکی دیے جانے کے بعد اس ڈیل کو نہ کرنے کے لیے آئی سبھی اپیل خارج کر دی تھی۔ بیلاروس کے رکشا منترالے کا کہنا ہے کہ 9000 روسی سینک دیش کی رکشا کے لیے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ تو شوتاؤ، اسی کے ساتھ ہمارا یہ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ تازہ سماچاروں سے اوگت ہونے کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیں، پتہ ہے parstoday.com/hi۔ تو شوتاؤ، خدا حافظ، شبھ راتری۔Thank you.